आज हम जो पहले बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स, हमें क्या मजबूरी है कि हम इस ज़माने में बैठ के अंबिया की मूवमेंट और तहरीक के उसूलों को डाइसेक्ट करें या समझने की कोशिश करें। वेल, जो पहली बात है वो ये है कि खुदावंद मुताल ने जब कायनात को खल्क किया तो इसको एक हदफ के तहत खल्क किया। खुदा ने इंसान को खल्क किया एक हदफ के तहत खल्क किया। आप देखिए कि हम में से जो जो अक्लमंद है वो किसी हदफ के बगैर कोई काम नहीं करता, तो खुदावंद मुताल तो सबसे ज़्यादा अकल रखने वाला है, मुमकिन नहीं है कि वो अकल के बगैर काम करे। यहाँ तक दलील में साथ आ गए आप मेरे। खुदा ने अब किस हिकमत के तहत इस कायनात को बनाया, किस हिकमत के तहत इंसान को इस कायनात में भेजा, ये वो सवाल है कि जो हम उठा रहे हैं आपके जहनों के लिए। आप इसके ऊपर खुद से सोचना शुरू करें कि इसके पीछे क्या क्या हिकमत हो सकती है। हम यहाँ से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, खुदा ने जो बेहतरीन मखलूक बनाई वो अंबिया और आइम्मा अलैहिस्सलाम थे। बस अगर आम इंसान को एक ऑब्जेक्टिव और एक गोल के तहत बना रहा है तो क्या अंबिया को और आइम्मा को बगैर किसी हदफ के बनाएगा? बस अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 1,24,000 अंबिया और 12 इमामों की मूवमेंट के पीछे हिकमत और वो हदफ, वो कॉमन गोल क्या है, उसको तलाश करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे लिए कामयाबी छुपी हुई है। और हम कभी कभी दीन को इस एंगल से भी अप्रोच करें, यानी रसूमात से निकल के अकली अनावीन के तहत, तो हम मजबूर हैं इस चीज़ को कि आइम्मा और अंबिया वो एक हदफ के तहत क्रिएट किए गए, और वो हदफ इतना आली था कि खुदा ने 1,24,000 अंबिया खल्क किए, और वो हदफ इतना आली था कि 12 इमाम खल्क किए जो कि शहीद भी हुए उस हदफ के लिए। बस इतनी बड़ी कौन सी चीज़ थी? इस चीज़ को हमें समझने के लिए हमारी क्यूरियोसिटी जो खुदा ने हमारी ज़ात के अंदर रखी है वो मजबूर करती है। हम मजबूर हैं कि इस मूवमेंट को समझें। दूसरी बात ये कि किसी भी मूवमेंट का, जब हम यहाँ तक अगर हमारे ज़हन मबजूल हैं कि ये मूवमेंट है, ये कंटिन्यूस मूवमेंट है, यानी ऐसा नहीं था कि हज़रत आदम का हज़रत इब्राहिम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, या हज़रत इब्राहिम का हज़रत इस्माइल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और मैं बाप बेटे की ताल्लुक़ की बात नहीं कर रहा, उस फ़िक्री ताल्लुक़ की बात कर रहा हूँ, या हज़रत मूसा का इन बाकी अंबिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था, हज़रत ईसा का भी बाकियों की मूवमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो एक अपनी चीज़ लेके आए और ख़ुद से ही चलाई और उसके बाद वो चले गए, ऐसा नहीं था। हमारा क्लेम ये है कि एक ही मूवमेंट थी, एक ही इलाही दीन था, एक ही खुदावंद मुताल का मंशूर था, जिसमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग आते गए, मुख्तलिफ अंबिया आते गए, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया और उसके बाद आइम्मा का दौर शुरू हो गया, वो भी उसी मूवमेंट के तहत। यानी ऐसा नहीं है कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, ऐसा नहीं है कि उनकी मूवमेंट एक स्टैंड अलोन मूवमेंट थी जिसका पीछे के मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये किसी की अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब है उसकी अंडरस्टैंडिंग फ्लॉड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कामिल नहीं है, ये दीन को समझा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मूवमेंट और नहजत से कोई ताल्लुक नहीं था, नहीं, वो उसी की कंटिन्यूएशन थी। और ऐसा नहीं हो सकता कि इमाम हुसैन सैयद शहदा अलैहिस्सलाम का इन सब की मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। बस ये बात अगर आज की आपने ले ली है तो ये सबसे कलीदी नुक्ता था कि ये एक कंटिन्यूस मूवमेंट है कि जो चलती आ रही है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत खातम अलैहिस्सलाम तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उसके बाद आइम्मा तक। अब हमारी बहस यहाँ पहुँच गई कि जब 12वें इमाम पे, इमाम ज़माना इमाम महदी अजल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ, जब यहाँ तक मूवमेंट पहुँची तो क्या ये उसूल, क्या ये प्रिंसिपल जो कि हमने अभी तक साबित किया पिछले 10 मिनट में कि हज़रत आदम से अभी तक एक ही मूवमेंट चलती आ रही है, तो क्या ये प्रिंसिपल चेंज हो गया? अगर ये प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ तो इस मूवमेंट का क्या हुआ? क्योंकि इस मूवमेंट का एक खासा है, इस मूवमेंट का खासा ये है कि इसका एक हेड, इसका एक वली, इसका एक पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन अथॉरिटी मौजूद होता था। अभी हम जो अहले बैत के मानने वाले हैं वो ये कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गैबत कुबरा में तशरीफ ले गए हैं। तो अब क्या हुआ इस मूवमेंट का? आया वो मूवमेंट आज से 1250 साल पहले आके जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गैबत में तशरीफ लेके गए, क्या ये मूवमेंट वहीं रुक गई? क्या ये मूवमेंट खत्म हो गई? यानी 1,24,000 अंबिया की मेहनत वहां खत्म हो गई? क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत, इमाम की जहमतें वो खत्म हो गई? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर लगना, ये सारी कुर्बानियां उसी मूवमेंट के लिए थी ना, कोई जाती मकसद तो नहीं था, कोई जाती जमीन का झगड़ा तो नहीं था इमाम का किसी से? किस लिए कुर्बानियां दे रहे थे? उसी मूवमेंट के लिए, उसी नहजत के लिए। बस क्या इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा जिसके ऊपर तीर बरसाए गए, आया बस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत के बाद अब इसको छोड़ दें, भूल जाए, या फकत रसूमात के अंदर मुकय्यद कर दें? उस मूवमेंट का क्या हुआ? यानी सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलाम अपना सर दे देते हैं जिस मूवमेंट की खातिर, हजरत अब्बास अलमदार अपने बाजू दे देते हैं जिस मूवमेंट की खातिर, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, शहजादा असगर जैसी कुर्बानियां देते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम जिस मूवमेंट की खातिर, तो क्या 1250 साल पहले वो मूवमेंट खत्म रुक गई? ये वो सवाल है कि जो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम मिलके इसके ऊपर सोचें, तफक्कुर करें और इसके जवाब तलाश करने की कोशिश करें।